थोड़ा सा सूरत इब्राहिम के मज़ामीन पे गौर व फ़िक्र कीजिएगा। देखिए, अल्लाह के नबियों के नामों पर ये सूरतें आ रही हैं, तो इनके अंदर पैगाम भी बड़े खूबसूरत हैं। सूरत इब्राहिम के अंदर शुक्र और कुफर का फ़र्क, और इसी तरह से अंधेरे और रोशनी, इसका बहुत ज़िक्र मिलेगा इस पूरी सूरत में। अगर आप नाम को देख लें तो हज़रत इब्राहिम का किरदार भी झलकता है। बी फोकस्ड, सोसाइटी का, वक्त का रिवाज जो भी, उसको छोड़ दो, उसकी फ़िक्र नहीं करो, बल्कि अल्लाह ताला के रास्ते में चलते जाओ जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले थे। और इसी में फिर आपको इंशाल्लाह उन कुर्बानियों का भी जिक्र मिलेगा जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में दी थी। इसमें चंद आयात इतनी खूबसूरत है कि अगर सिर्फ उन दो तीन आयात पर आज की उम्मत मुस्लिमा अमल करने लग जाएगी तो यकीनन तब्दीली आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाशुक्रियों को छोड़कर शुक्रगुजारियां पैदा करो अपने अंदर, पॉजिटिव सोच लाओ, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, और इसी तरह से फिर अपने आप को अल्लाह के रास्तों में एक मज़बूत दरख्त की तरह खड़े करो। इसमें एक आयत है जिसमें पूरे इस्लाम का खुलासा दिखता है कि इस्लाम एक मज़बूत दरख्त की तरह फैलता है। और इसी तरह से आप देखिए कि इस सूरत को पढ़ने के दौरान आप जिन चीज़ों को आयतों के साथ देखेंगे तो वो टोटल 8 टॉपिक हैं, टोटल 52 आयतें हैं। मक्की सूरत है। आयत नंबर 1 से 4 में कुरान का मकसद और तारुफ है। आयत नंबर 5 से 8 में तारीख से सबक दिया गया कि शुक्र और कुफर करने वाली कौमों का क्या हाल हुआ। आयत 9 to 17 में शुक्र और कुफर के दरमियान की कशमकश है कि कैसे हिस्ट्री में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद आयत नंबर 18 से 23 काफरों के आमाल की मिसाल दी जा रही है और आखरत का एक मुकालमा है। आयत नंबर 24 से 27 में कलमा तैयबा को एक खूबसूरत मिसाल से पेश किया गया। आयत 28 से 34 में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का हुक्म है वरना अजाब होगा। और आयत 35 से 41 में तारीख़ इब्राहिम से शुक्र और तौहीद की दलील है। और आखिर में फिर आयत 42 से 52 में अक्लमंदों को क़यामत के कुछ मनाजर दिखाए जा रहे हैं। पूरी सूरत का टॉपिक इंतज़ार और अय्यामिल्लाह, नाशुक्री का नुकसान, और इसी में वो मुकालमा है जो क़यामत के दिन शैतान करेगा। आइए सुनते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शैतान के फंदों से आज़ाद कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख्रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अलिफ लाम रा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया ताकि आप लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाएँ। हाईलाइट करें, यह किताब आपको रोशन ख्याल बनाती है, यह किताब आपको बैकवर्ड नहीं बनाती, इल्यूमिनेट भी करती है और एनलाइटन भी करती है। आज इसी किताब को हमने ओल्ड डेटेड बुक कहकर छोड़ दिया। पूरा कुरान जब हो जाएगा तो आप फील करेंगे कि आपकी सोच निखर गई, इस्लाम से खौफ दूर हो गया और आपको लगेगा कि वाकई मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इस दुनिया में। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज दिखेगी, खौफ तो कम अज़ कम आपके दिल से निकल ही जाएगा। और ये पूरे कुरान का मकसद भी बताती है, जो हमारा मोटो है जिस पे हम वर्किंग मेथडोलॉजी अपनी सेट करते हैं वो यही आयत है कि हमने लोगों को अंधेरों से निकालना है। एनलाइटन योर हार्ट्स विद द नूर ऑफ अल कुरान, यही स्लोगन है, आपने अगर बैनर पे कभी देखा हो, कि असल में ये अंधेरों से रोशनियों की तरफ लाने वाली किताब है। अल्लाह ताला मुझे आपको इस पर ले आए। याद रखिए, इस किताब को छोड़ने वाले डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि ये एक अंधेरा है। किधर बुलाती है ये किताब? इनके रब की तौफीक से उस रब के रास्ते की तरफ जो ज़बरदस्त और अपनी तारीफ़ में आप महमूद है और ज़मीन व आसमान की सारी मौजूद चीज़ों का मालिक है। वबैलु लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद, और तबाही है, सजा, तबाहकुन सजा है हक को कबूल करने का इनकार करने वालों के लिए। कौन होता है काफिर? आपका मेरा तो एक ही गुमान है ना, अल्लाह को ना मानने वाला। नहीं, अगले आयत को देख लीजिए, काफिर की एक नई तारीफ़ आपके सामने आ रही है। अल्लज़ीना यस्तहिब्बूना अल-हयात अद-दुनिया वल-आखिरा। कौन है काफिर? जो दुनिया की ज़िंदगी को आखरत पर तरजीह देता है। कुफर के दर्जे होते हैं, तो आप मैं अपने अमल को चेक कर सकते हैं कि मैं किसको तरजीह देती हूँ, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सी चीज़ है, दुनिया या आखरत। जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये रास्ते इनकी ख्वाहिशों के मुताबिक टेढ़ा हो जाए, ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए। अल्लाह हम सबको गुमराहियों से बचा ले। हमने अपना पैगाम देने के लिए जब भी कभी कोई रसूल भेजा तो इसने अपनी कौम ही की ज़ुबान में पैगाम दिया ताकि वो इन्हें खोल कर अच्छी तरह से बयान करे। तो गोया के कुरान का तर्जमा अपनी ज़ुबान में समझना लाजिम है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हर नबी ने अपने कौम की ज़ुबान में बात की थी। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। वह अल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब भी है और वो हिकमत वाला भी है। आज आप देखिए इंग्लिश फर फर बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हमारी तो मासियाँ तक इंग्लिश मान लेती हैं, बोल लेती हैं, क्योंकि उनको नौकरी करनी है, संडे मंडे छुट्टी। तो क्या मैं और आप कुरान की अरबी नहीं सीखेंगे? हमारा भी तो मालिक है ना, हमें भी तो वो ये ज़ुबान सिखा कर हमारी तरबियत करता है। और यकीन करें, जो अरबी ज़ुबान में हुसन है, मैं खुद इकरार करती हूँ कि मैं तर्जमा पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उसकी इंटेंसिटी यूँ चली गई। वो अल्लाह के कुरान के अल्फाज का जो रूप होगा ना, वो हमारे तर्जुमों में बात नहीं आती, बस तर्जुमानी हो जाती है, जस्ट लाइक बात हम समझ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इतना वक्त लगाने वाला बनाए कि हम इसको बेहतरीन तरीके से समझें। हम इससे पहले मूसा को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं, इसे भी हमने हुक्म दिया था कि अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ। देख लें, बार बार तारीकी से रोशनी का तذکرہ ہے, اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ہسٹری پڑھو لیکن عبرت کے لیے، صرف فکشن کے طور پر نہیں۔ اور ان آیتوں میں نشانی ہے ہر بہت صبر اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اللہ میں صبار بھی بنا دے اور شکور بھی بنا دے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی سے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا لیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا، لائن شکر تم لازید انکم، اگر شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ آپ اپنی دوست کا شکریہ بولتی ہیں اور کہتی ہیں دال بڑی مزے کی تھی، اگلی دفعہ کیا ہوگا؟ جب دال پکائے گی آپ کو بھیج دے گی۔ اور آپ کو کھانا بھیجا، سناؤ کیسا تھا، کہتے میں نہیں کھاتی، ہمارے گھر کھاتا نہیں کوئی کسی کا، اگلی دفعہ بھیجے گی۔ یہی ہے لائن شکر تم لازید انکم، خوش رہا کریں، اسمائلی، پرجوش۔ اللہ نے جو آپ کو دیے شکر کریں، اللہ آپ کو نعمتیں اور دے گا، اور اگر روئے دھوئیں گے، جلے کڑے رہیں گے تو پھر رونا دھونا ہی پڑتا رہے گا۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم، اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے رہنے والے سب کفر کر لیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ کیا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ اپنی شان سے اعلیٰ ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ الم یاتکم نبؤ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی قومیں، جن کا شمار اللہ کو معلوم ہے، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے منہ ہاتھ میں دبا لیے۔ ہر دور میں لوگوں کو نبیوں کا پیغام عجیب لگا، اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کی طرف سے بہت بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا اف اللہ ہی شکن، ہائی لائٹ کیجیے گا، بڑا خوبصورت جملہ ہے ایسے لوگوں کو بولنے والا۔ کہا کیا تم اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان و زمین کا خالق ہے؟ وہ تم کو بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ اللہ اکبر، نبیوں کے منہ لگتے تھے۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آئی؟ یہ ہے وجہ جس پہ نبی اچھے نہیں لگتے تھے، کہ خاندان کے طریقوں سے ہمیں نہ روکو۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تم جیسے بشر ہی تو ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ کے حکم سے آ سکتی ہے، اور اللہ پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ اس کو سوچئے ذرا، دل سے شکر کا چشمہ پھوٹتا ہے اس بات پہ کہ اللہ نے ہمارا راستہ کھول دیا، اللہ نے ہمیں گائیڈ کر دیا۔ رہ گئیں تکلیفیں آزمائشیں، تو جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو ہمیں تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ یہ ہے تھریٹ، بہت سارے لوگوں کو ملتا ہے، سوسائٹی سے، دوستوں سے، واپس ہو جیسی پہلے تھی ویسی ہو جاؤ، ہمیں نہیں تم ایسی اچھی لگتی، نصیحتیں کرنے والی اور ہر وقت ٹوکنے والی۔ ہاں تو لوگ بلاتے ہیں واپس، ورنہ دوسری طرف کیا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، یعنی پھر ہم تمہیں اپنی دوستی سے ہی نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ نام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو۔ دعا کیجیے اللہ میں خوف دے دے، اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، और हर जब बार दुश्मन हक ने मुंह की खाई, फिर इसके बाद आगे इसके लिए जहन्नुम है, वहाँ इसे कच लहू का सा पानी पीने को दिया जाएगा, जख्मों की धोवन। अल्लाह अकबर, जिसे वो ज़बरदस्ती हलक से उतारने की कोशिश करेगा लेकिन करीब नहीं कि उसको निगल सके, और उसको मौत हर तरफ से आती भी दिखेगी मगर वो मरने ना पाएगा, और आगे उसके लिए एक सख्त अजाब इसकी जान का लागू रहेगा। कहते ना, मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया, इनकी आमाल की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफ़ानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो। कुछ लोग कहते हैं जो नॉन मुस्लिम नेकियां कर रहे हैं आज दुनिया में उसका क्या होगा, उसका जवाब है इसमें। दुनिया में इनको अल्लाह उसका बदला दे रहा है, इज्जत दौलत बेहतरी खूबसूरती सब कुछ है, लेकिन आखिरत के लिए किया नहीं तो उस दिन के लिए कबूलियत क्यों होगी। वो अपने किए का कुछ फल ना पा सकेंगे, यही परले दर्जे की गुमगुश्तगी है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक को हक पर कायम किया, यानी एक मकसद दिया। वो चाहे तो तुम सब को ले जाए और एक नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए। हम कहते हैं हाउ इज़ इट पॉसिबल, वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह के लिए ये कुछ मुश्किल नहीं। अब क़यामत का दिन ज़रा सोचिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग आयते हैं वल्लाही, एक लफ्ज़ भी ना बोलूँ ना तो तर्जमा भी दिल खोलने के लिए काफ़ी है। वबरज़ुलिल्लाहि जमीया, और जब ये सब लोग इकट्ठे अल्लाह के सामने बेनकाब होंगे, तो इस वक्त इनमें से जो दुनिया में कमज़ोर थे वो इन लोगों से जो बड़े बने हुए थे कहेंगे, दुनिया में हम तुम्हारे ताबे थे, यानी ट्रेंड सेटर्स तुम थे, हम तो आंखें बंद करके तुम्हारे ट्रेंड्स लेते थे, अब क्या तुम अल्लाह के हिसाब से हमको बचाने के लिए कुछ कर सकते हो। वो जवाब देंगे, अगर अल्लाह ने हमें निजात की कोई राह दिखाई होती तो हम ज़रूर तुमको दिखा देते, अब तो यकसा है हम ख्वाह जज़ा फ़ज़ा करें या सब्र, बहरहाल हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। अब ज़रा तसव्वुर में लाइए क़यामत का मैदान, और शैतान एक तकरीर करने लगा है, सुनिएगा। और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, हकीकत यह कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे। हैं शैतान जी क्या कह रहे हैं, सच बोल रहा है, और मैंने जितने वादे किए थे इनमें से एक भी पूरा नहीं किया। आपका कोई प्यारा आपको कह दे जो वादे कर रही हूँ पूरे नहीं करूँगी तो गुस्सा आएगा ना, शैतान वहाँ जाके बताएगा मैंने तो वादे पूरे नहीं करने थे, और सच्ची बात है मेरा तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो था भी नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं कि अपने रास्ते की तरह तुम्हें दावत दी। हाँ तुमने मेरी दावत पर लब्बैक कहा, यानी आई जस्ट इन्वाइट यू, आई डिडंट फोर्स यू। शैतान क़यामत के दिन कहेगा मैंने मजबूर तो नहीं किया था, पर तुम तो पहले ही तैयार थे गुनाह की दावत पर लब्बैक कहने के लिए, नेकी की दावत पर सोचते थे देखते हैं लेट मी थिंक लेट सी, और मेरी दावत का पुकार फौरन पकड़ते थे, एक और कार्ड नहीं है किसी और को भी दे दूँ, मेरी दोस्त का भी ये फेवरेट सिंगर है मैं उसको भी साथ ले आऊँ, तुम्हारा तो ये हाल था। अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सकता और ना तुम मेरी, इससे पहले तुमने मुझे खुदाई में शरीक बना रखा। ये कौन सी शराकत है, इसको नोट कीजिएगा, जल्दी में रह ना जाए हुक्म में। शैतान को सजदा कोई नहीं करता, लेकिन अल्लाह का हुक्म छोड़ के जब हम शैतान का मानते हैं ना तो शैतान को शरीक बना लेते हैं अल्लाह का, और मैं इससे बरी उज़िमा हूँ। अल्लाह अकबर, इन ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, और ज़ालिमों के लिए तो दर्दनाक सज़ा यकीनी है। इसके बरक्स वउदखिला अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, इसके ख़िलाफ़ वो लोग जो दुनिया में ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हैं वो ऐसे बाग़ों में दाखिल किए जाएंगे जिसमें नहरें बहती होंगी, वहाँ वो अपने रब के इज़्ज़त से हमेशा रहेंगे। सोचिए लफ्ज़ हमेशा को, ये वक्त गुजर जाएगा, तकलीफ़ थकन बीमारी परेशानी, वहाँ जाकर चैन ना आए तो क्या बनेगा। और वहाँ इनका इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से होगा, क्या तुम देखते नहीं हो, क्या देखना है गौर करो कि अल्लाह ने एक मिसाल दी है। ये है वो आयत जिसको आप इंशाल्लाह अलग से भी सुनेंगे, कलिमा तैयबा को किस चीज़ से मिसाल दी, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी ज़ात का दरख्त जिसकी ज़मीन में जड़ें गहरी जमी हुई और शाखें आसमान तक पहुँच चुकी, हर आन वो अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। ये मिसाल अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इससे सबक लें। क्या पता चला मोमिन एक दरख्त की तरह है। अब देखिए दरख्त साया देता है ना, ऑक्सीजन देता है, कार्बन लेता है, दुखी दिलों के लिए एक सुकून का जरिया होता है। मोमिन भी ऐसे ही होता है, अपने इर्द गिर्द की बुराई को दूर करता है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करता है, और साथ ही साथ आप देखिए कि दरख्त को ऊपर फल होता है, लोग पत्थर मारते हैं, मोमिन में खैर होती है, लोग ताने भी देते हैं, वो कहता है दे लो मुझे क्या, मैंने तो अपना काम करना है। इसके बरक्स कलम खबीसा की मिसाल उससे अपोजिट है बिल्कुल, का शजरत इन खबीसा, एक बदजात दरख्त की सी है जो ज़मीन की सतह से ऊपर उखाड़ लिया जाता है और इसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं है। कभी आपने इंद्राइन का दरख्त देखा, उसकी तरफ इशारा है, ऊपर बहुत फैलता है लेकिन जड़ नहीं होती, एक जड़ काट दें سب خشک ہو گیا، یعنی کفر ایسے ہی ہے. یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، قبر کی بات ہے اس میں. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک ثابت قول کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں مضبوطی یا ثبات دیتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ کر پاؤں جم جاتے ہیں، مشکلات میں نہیں ٹلتا، اور اللہ ظالموں کو بھٹکاتا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جو وہ چاہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں نا تو دل ڈر جاتا ہے. یہ آیت بہت خوبصورت طرح سے اس کو واضح کرتی ہے، اگر آپ اس کی تفسیر سنیں، کیسے منکر نکیر کے آنے کے وقت بندے کا دل جم جاتا ہے کلمے کی وجہ سے، اور جو کافر ہیں وہ ڈرتا ہے. لا دری لا دری، حدیث میں آتا ہے کافر منکر نکیر کو آکتا دے کر اور من ربو کا ما دینو کا من رسولو کا کے جواب میں کیا کہتا ہے، لا دری آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہو. صرف لفظ اللہ اس کی زبان پہ نہیں آئے گا، محمد کا نام نہیں آئے گا، اسلام کا لفظ نہیں آئے گا، کیونکہ زندگی میں جو ثابت قدم نہیں تھا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے وہ کہتا ہے کاش میں کچھ پڑھتا اور لکھتا اور تمہارے ان سوالوں کا جواب دیتا. اللہ تعالیٰ میں وہم ثابت قدم کر دے. کیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی، کس نے پائی؟ آج میں نے اور آپ نے پائی ہے، 13واں پارہ پورا کر رہے ہیں، اسلام کی نعمت پائی، نبی کے امتی ہونے کی نعمت پائی، اور اسے کفران نعمت سے بدل دیا، ناشکری کر دی، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر دیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر دوزخ میں جانا ہے. اللہ ہمیں بچائے. اب سورت کے خاتمے کی طرف آیتیں آتی ہیں. اے نبی، میرے جو بندے ایمان لائے ان سے کہو نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خیر کی راہ میں خرچ کریں. بار بار ہر پارے کے اندر کوئی نہ کوئی خرچ کی بات آتی. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی، بہت ہی اچھی لگی، پہلی دفعہ پڑھی، کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. صدقہ دیتے ہیں نا تمہاری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. کوئی ایک دو چار پانچ کی دعا کر لیں کہ باکس میں ڈال جائیں، تاکہ آپ کو مجھے شاید کسی آنے والے صدمے اور فتنے سے اللہ تعالیٰ بچا لے، قبل اس کے کہ وہ دینا ہے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہوگی. اللہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا. فخر تب ہی من الثمرات رزق لکم، پھر اس کے ذریعے سے تم کو رزق عطا کیا، طرح طرح کے پھل دیے. جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا. جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں. ہائی لائٹ کریے گا، ہم تو بریک چاہتے ہیں نا، ہم تھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو تھکتے بھی نہیں، وہ تو مسلسل چلتے ہیں. اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا جس نے وہ سب کچھ تم کو دیا جو تم نے مانگا. بڑا دل چاہ رہا ہے اس آیت پہ غور کرواؤں. اللہ کہتے فَإِنَّ لَكُمَا سَأَلْتُكُمْ، تم نے جو مانگا ملا. سچ ہے کہ نہیں؟ جو مانگتے مل نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر والا بنا دے. اور اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرنے لگو تو نہیں کر سکتے. دیکھیں نعمتیں نہیں، ایک نعمت، صرف سانس کی نعمت کا حق نہیں ادا کر سکتے. جسم کے جتنے آرگنز ہیں نا، اسٹمک اور اسی طرح سے لنگس، برین، ایک ایک کو نعمت سمجھیں تو ایک کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے. حقیقت ایک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے. اب دعاؤں سے بھرا ہوا آخری رکوع، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے. ہم بھی دعا کریں اپنے ملکوں کے لیے، اللہ امن دے دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اللہ ہماری اولادوں کو بھی شرک سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہت ساروں کو گمراہی میں ڈالا، ممکن ہے میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں. لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور میرے خلاف جو طریقے اختیار کرے یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں، یعنی جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ، غیر عزیز اور نند بیتک المحرم، اس کو سنتے ہم بھی سوچیں ہم نے دین کے لیے آج تک کیا قربانی دی ہے. ہمیں تھوڑا سا بیٹھنا بولنا ہی مشکل ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھو ابراہیم نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو میرے گھر چھوڑ دیا. کیسے؟ اشارہ ہے وہی حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑنے والا. اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا کہ لوگ نماز قائم کریں. یعنی اپنا گھر ویران کر لیا تیرا گھر آباد کرنے کے لیے. اللہ ہم سے بھی یہ خدمت لے لے، ہمارے بھی گھر تو آباد کرنا، ہمیں تیرے گھر آباد کرنے کی فکر لگا دے. پست لوگوں کے دلوں کو ان کا شوق دے دے، اور ان کو کھانے کے پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل और इसहाक जैसे बेटे दिए। हकीकत यह कि मेरा रब ज़रूर दुआओं को सुनता है। ऐ मेरे परवरदिगार, ये तो आप भी अपने बच्चों की नियत तरक करके और अपने माँ बाप के लिए मांगिएगा। रब्बी जालनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। दुआ करें बच्चों की नमाजों के लिए। फतकब्बल दुआ, और ऐ मेरे रब दुआओं को कबूल कर ले। परवरदिगार मुझे और मेरे वालदैन को और सब ईमान लाने वालों को इस दिन माफ़ कर देना जबकि हिसाब कायम होगा। आमीन। दुआ करें अपनों के लिए। अब जो जालिम जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तुम इससे गाफिल ना समझो। अल्लाह तो इनको टाल रहा है, अल्लाह तो इन्हें टाल रहा है उस दिन के लिए जब हाल ये होगा। अब ज़रा क़यामत का मंजर आंखों से देखिएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कब आंखें फटती हैं? खौफ और हैरत से। सर उठाए भागे चले जा रहे होंगे, नज़रें ऊपर जमी हैं और दिल उड़े जा रहे हैं। खौफ का कोई वक्त याद कीजिए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से तुम इन्हें डराओ जबकि अजाब इनको आ लेगा। उस वक्त ये जालिम कहेंगे, मे हमारे रब हमें थोड़ी सी मोहलत तो दे दो, हम तेरी दावत को लब्बैक कहेंगे। अब क्या फ़ायदा, वक्त तो ख़त्म हो गया। और रसूलों की पैरवी करेंगे मगर इनको साफ साफ जवाब दिया जाएगा, क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा खा कर कहते थे हम पर तो कभी जवाल आना ही कोई नहीं? आज भी लोग यही सोचते, हमने कहाँ मरना है, हमने बूढ़े नहीं होना। हालांकि तुम इन कौमों की बस्तियों में रह चुके हो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था और देख चुके थे कि हमने इनसे क्या सलूक किया, और इनकी मिसालें दे देकर हम तुम्हें समझा चुके। उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल देखी मगर इनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था, अगरचे इनकी चालें ऐसी गज़ब की थीं कि पहाड़ इनसे टल जाएं। अल्लाह हमें ऐसी चालों से बचा दे। पस नबी, हरगिज़ ये गुमान न करो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादों के खिलाफ करेगा। अल्लाह ज़बरदस्त और इंतकाम लेने वाला है। डराओ इन्हें उस दिन से जबकि आसमान और ज़मीन बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे। इतना खूबसूरत आसमान नहीं रहेगा और इतनी सरसब्ज़ ज़मीन नहीं रहेगी। जब यहाँ से निकलते हैं तो आपको सब्ज़ा देख के प्यार आता है अल्लाह पे, ऐसे लगता है अल्लाह ने हमें बीच में रख के ना एक प्याली में चारों तरफ सब्ज़ बाग रख दिए। जो वॉक कर रहे होते हैं लोग इतने प्यारे लगते हैं, मैं आते जाते देखती हूँ तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इनका आना कबूल कर ले। अल्लाह अपने रास्तों पर हमें ले आता है और इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। कहा अल्लाह ताला ज़बरदस्त भी है और इंतकाम लेने वाला है। डराओ इनको उस दिन से जबकि आसमान और ज़मीन बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे, और सब के सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब होंगे। अब आगे जानना के बड़े ज़बरदस्त मंजर है। वतरल मुजरिमीन यौमाइज़ मुक़र्ररीन फ़िल अस्फ़ाद, और उस रोज़ तुम मुजरमों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े होंगे, तारकोल के लिबास पहने होंगे। क्या होती है तारकोल? सड़कों पे लुक डालते हैं ना, ज़रा सी चिपक जाए ना तो वहीं से जल जाए इंसान की स्किन, और आग के शोले इनके चेहरों पर छाए जा रहे होंगे। देखिए कुरान है, तर्जुमा है, मेरी बात नहीं है, सच है, मानिए ये सच है। ये ना कि कंट्रोवर्सी, ये नहीं एक्चुअली नहीं, इट विल हैपन, उस मालिक की बात है, मुझे आपको इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज फिक्र कर लें हम सब अपने और दूसरों के लिए कि आग का ईंधन ना बने। ये इसलिए होगा कि अल्लाह हर मुतनफ़िस को इसके किए का बदला दे, और अल्लाह को हिसाब लेते हुए कुछ देर नहीं लगती। और आखिरी आयत जो मुझे आपको दावत देती है कल फिर अपने साथ औरों को लेकर आए, कुरान की बात है, हाज़ा बलाग़ुल लिन्नास, ये एक पैगाम है, बलाग पहुँचाओ, वली युन्ज़रू बिही, ये इसलिए भेजा गया कि इनको इसके ज़रिए से ख़बरदार किया जाए, पूरा नहीं करना, ख़बरदार करना है। वली आलमु अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, और वो ये जान ले कि हकीकत में अल्लाह बस एक है, और जो अक्ल रखते हैं वो होश में आ जाए। ये किताब सब की अमानत है, सब तक ये अमानत पहुँचानी है। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। ये जितना एक्स्ट्रा वक्त होता है ये अल्लाह आपके लिए सदका करे। असल में आजकल ये जो पारे चल रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, आज तो हमने सवा पारा किया, और ये जो एक्स्ट्रा टाइम है अल्लाह आपके लिए सदका करे। जो जल्दी में वो खामोशी से निकल जाए, और जल्दी किस बात की है, बड़ी खूबसूरत तिलावत है जो हम इंशाल्लाह आपको सुनाते हैं।
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم تغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.